भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाल्ये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापिकाचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदान स्वामी श्री प्रभुपाद जी की अपार कृपा से विश्व भर में वैदिक सनातन धर्म श्रीमद् भगवद गीता भागवत के ऊपर आधारित जन कल्याण और लोगों को सुख शांति प्रदान करने के लिए जो प्रचार प्रसार हो रहा है उसके अंतर्गत आज यहाँ वैशाली में कविता देवी केवल्ला प्रभा और केशव सखा प्रभु ने अपने परिवार के मंगल के लिए और आप सब यहाँ जो इस आवास में निवास करते हैं उन सब के कल्याण के लिए फिर तो पूरे देश और विश्व कल्याण के लिए वैदिक साहित्य के पके हुए फल भगवत वेद विस्तार के अवतार द्वैपायन व्यास की परिपक्व अवस्था की कृति ग्रंथराज पुराण शिरोमणि श्रीमद् भागवत महापुराण का 7 दिवसीय यहाँ श्रवण वर्णन का जो आयोजन किया है उसमें आप जो श्रद्धालु महानुभाव पधारे हैं आपका स्वागत करते हैं और इस परिवार का केशव सखा केवल्ला प्रभा और इनके पूरे परिवार का धन्यवाद करते हैं कि कली काल में 7 दिवस निकालकर अपने और अपने बंधुओं मित्रों के कल्याण के लिए इस अद्वितीय और श्रद्धा जगाने वाले भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जगाने वाले हृदय में जागृत करने वाले कलयुग के अंदर ही कलयुग के लोगों का कल्याण करने के लिए कलयुग के ऊपर विजय प्राप्त किए हुए सर्वश्रेष्ठ श्रोता परीक्षित महाराज की परंपरा के अंतर्गत इस भागवत के श्रवण का सौभाग्य प्राप्त कराया है। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं है। 11वें स्कंद में उद्धव के सामने भागवत में भगवान प्रवेश किया, श्री कृष्ण ने भागवत में प्रवेश किया। मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं इसी भागवत में प्रवेश कर रहा हूं। और श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा कि एक एक भागवत के पृष्ठ के ऊपर आपको भगवान श्री कृष्ण का उनके जो पार्षद हैं जो उनके संगी साथी हैं उनके साथ दर्शन होगा। बस मन शुद्ध होना चाहिए और मन शुद्ध तब होता है जब आहार विहार व्यवहार शुद्ध होता है और ये सब शुद्ध तब होता है जब शुद्ध भक्तों का संग होता है। और श्री चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने कहा कि पुराणम अमलम, ये अमल पुराण है। अमल पुराण का मतलब पवित्र, मल कहते हैं कचरे को, अ का मतलब नहीं, ये अमल पुराण है। वे हा भागवतम पुराणम अमलम मतम हा इदम मतम, ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है। आराध्य ब्रजेश ब्रजेश तन्यम तदधाम वृंदावनम, अगर आराधना करनी है तो भगवान श्री ब्रजेश तन्यम, ब्रजेश ब्रज का राजा, ब्रजेश माने ब्रज का राजा, ब्रज का राजा कौन है, नंद बाबा। तन्यम मतलब उसका पुत्र, उसके तन से प्रकट, ब्रजेश तन्यम मतलब भगवान श्री कृष्ण। तदधाम वृंदावनम और उनका धाम वृंदावन, भगवान और भगवान के धाम में भी अंतर नहीं है। भगवान का नाम भगवान का धाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, ये चारों ही अभिन्न हैं, चारों ही नित्य हैं, शाश्वत हैं। और कैसे भगवान की उपासना करनी चाहिए, तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं व्रज वधु वर्गेण, जैसे व्रज के अंदर भगवान के शुद्ध प्रेम की मूर्ति श्रीमती राधा रानी के अंग से विस्तृत गोपियों ने जैसे भगवान से सर्वधर्वान धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, इस श्लोक के स्तर के ऊपर प्रेम किया, वो प्रेम 5वां पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये तो 4 वेदों में वर्णित पुरुषार्थ है, 5वां पुरुषार्थ है प्रेम पुरुषार्थ मान, जो भगवत प्रेम सबके हृदय में भगवान ने जन्म सिद्ध डाल के रखा है। कोई ऐसा हृदय नहीं है जिसमें भगवत प्रेम नहीं हो, बस उस प्रेम को जगाए वो भाग्यशाली 5वां पुरुषार्थ का सार्थक करने वाला साधु संत और महात्मा इस संसार में कल्याणकारी हो जाता है। श्रीमद भागवत है कृष्णेर अंग प्रति श्लोके प्रति अक्षरे गोपी कृष्ण नाना रंग। और ये किसके मुख से सुंदर शब्द निकल रहे हैं? श्री राधा कृष्ण के युगल स्वरूप पीत वर्ण हे मांगो, ये विष्णु सहस्र नाम का श्लोक है। हे मांगो, जिसका अंग कांति सोने जैसी है, उस महाप्रभु गौरंग महाप्रभु के मुख का ये वचन है। भागवत है श्री कृष्णेर अंग, ये भागवत भगवान श्री कृष्ण का अंग है। अंग का मतलब उसका विग्रह है, इसलिए पद्म पुराण में कहा गया है पहला और दूसरा स्कंद श्रीमद् भागवत का भगवान के चरण कमल है, तीसरा और चौथा इसका स्कंद भगवान के जांघे हैं, पांचवा स्कंद भगवान का उदर है, छठा स्कंद भगवान का वक्षस्थल है, सातवां और आठवां भगवान की दो भुजाएं हैं, नवा स्कंद भगवान का कंठ और दसवां भगवान श्री कृष्ण का मुस्कुराता हुआ मुखमंडल है, ग्यारहवां स्कंद ललाट और बारहवां स्कंद कपाट है। ये हुआ श्रीमद भागवत है कृष्णेर अंग प्रति श्लोके प्रति अक्षरे, एक एक अक्षर में और एक एक श्लोक में गोपी कृष्ण नाना रंग। भगवान और भगवान के प्रेमी भक्तों के बीच में जो आदान प्रदान है प्रेम का, उसका सुंदर दर्शन है श्रीमद भागवत में। तो भागवत के श्रवण वर्णन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भागवत में से भक्ति प्रकट होके सुनने वालों के हृदय में आकर विराजमान हो जाती है। भागवत के अंदर से भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण भक्ति, और भक्ति के दो फल ज्ञान और वैराग, ये भागवत से प्रकट होकर और श्रवण कर्म करने वाले के हृदय में स्थापित प्रकट रूप से हो जाते हैं। फिर उसके जीवन में शोक मोह भय अपाह, शोक का मतलब भूतकाल का दुख, मोह का मतलब वर्तमान काल में जो मोह है, और भय का मतलब भविष्य का भय एकदम समाप्त हो जाता है। तीनों कालों से अतीत हो जाता है, तीनों गुणों से परे निर्गुण अवस्था को प्राप्त करता है। कब? जब हृदय में भगवान की अनन्य भक्ति, केवल्य भक्ति, उत्तम भक्ति प्रकट होती है। प्रकट होती इसलिए कहते हैं, बाहर से लाई नहीं जाती है, ये सबके हृदय में भाव और प्रेम पहले से भरा हुआ है। केवल इसको श्रवण के जल से सिंचन करने से ये अपने आप उदय हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। सो श्रीमद् भागवत का महात्म वैसे तो सब पुराणों में है, पद्म पुराण में 6 अध्यायों में और स्कंद पुराण में 4 अध्यायों में श्रीमद् भागवत का महात्म है। महात्म का अर्थ होता है महिमा। ऐसे अद्भुत भागवत के श्रवण वर्णन का परिणाम, जिसको सुन के लोगों को भागवत के प्रति श्रद्धा बढ़े, आस्था जागे और भागवत के श्रवण वर्णन में उनका उनकी रुचि हो, इसलिए महात्म होता है। फिर एक प्रश्न उठा, जब भागवत के अंदर ही लिखा है कि व्यास देव ने 17 पुराण, 4 वेद, 108 उपनिषद, 17 पुराण, महाभारत, वेदांत सूत्र के प्रकट के बाद भागवत को नारद की प्रेरणा से प्रकट किया, तो फिर पूर्ववर्ती प्राणों में भागवत का महात्म कैसे आया? ये प्रश्न उठता है कि जब भागवत लिखी ही सबसे बाद में गई, प्रकटी बाद में हुई, तो पहले जो पुराण प्रकट हुए उनमें भागवत की महिमा कहां से आ गई? तब हमने इसलिए कथा शुरू यहां से की थी दास ने, कि भगवान और भागवत में जब अंतर नहीं है, तो क्या ऐसा समय होता है जब भगवान नहीं होते हैं? भगवान तो नित्य है, शाश्वत है कि नहीं है? कभी प्रकट होते हैं, कभी अप्रकट होते हैं, अवतार काल में प्रकट होते हैं और फिर अप्रकट हो जाते हैं। ऐसे ये शास्त्र भी प्रकट और अप्रकट होते रहते हैं। जैसे भगवत गीता का सभी अध्ययन करते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, पहले ये भगवत ज्ञान, गीता का ज्ञान मैंने विवस्वान को दिया था, काल के प्रभाव से लुप्त हो गया, आज फिर मैं यही ज्ञान आपको दे रहा हूं। और फिर काले नेह महता योगो नष्ट परम तप, ये दिव्य ज्ञान समय समय के ऊपर प्रकट होते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं। तो मानो के भागवत कली काल से पहले लुप्त हो गया था और व्यास देव के तपोपूत हृदय में, तपस्या से पवित्र किए हुए हृदय में नारद जी की प्रेरणा से, नारद भी भगवान का अवतार है, व्यास भी भगवान का अवतार है, लेकिन नारद जी की प्रेरणा का मतलब है गुरु परंपरा की रक्षा करने के लिए। कि भागवत कैसे प्राप्त हुई, बोला गुरु परंपरा से प्राप्त हुई। तो गुरु परंपरा की आचार्य पद्धति की रक्षा के लिए नारद से प्राणन प्रेरणा से सरस्वती के तट के ऊपर, पश्चिमे तटे सरस्वती के भक्ति योगे मन समाहित, भक्ति योग से मन समाहित करके व्यासदेव के हृदय में ये भागवत धारावाहिक, जैसे टेलीविजन में हम धारावाहिक कोई कार्यक्रम देखते हैं, ऐसे पूरा भागवत की लीलाएं धारावाहिक व्यास देव के हृदय के दूरदर्शन में स्फुरित होने लगी। और फिर उन्होंने इस भागवत को अपने पुत्र सुखदेव को सिखाया और सुखदेव ने ये भागवत परीक्षित के सामने मधुर सुर में गा के सुनाई। तो ऐसे भागवत नित्य है, शाश्वत है, कभी प्रकट होती है कभी अप्रकट होती है। इसलिए पूर्ववर्ती प्राणों में अनादि काल से ये पुरानी पुराणिक विद्या, ये वेद विद्या, ये शाश्वत है, भगवान से प्रकट हुई है। इसलिए कभी प्रकट हो कभी अप्रकट हो, जैसे सूर्य कभी सुबह उगता है शाम को अस्त हो जाता है, कोई नहीं कहता है कि सूर्य का अस्तित्व नहीं है। आप कहते परसों सूर्य जो है वो तो बड़ा धूप था, आज बिल्कुल धूप नहीं निकला, इसका मतलब परसों भी सूर्य था और आज भी सूर्य है और आगे भी सूर्य रहेगा। तो ऐसे भगवान और भगवान के गुणगान करने वाले शास्त्र जैसे भागवत अथवा भगवान के मुख की वाणी भगवत गीता, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो ये बात पहले समझनी चाहिए। और प्रायः भागवत कथा में स्कंद पुराण के महात्म को कहा जाता है और कहना भी चाहिए, लेकिन चार अध्यायों का स्कंद पुराण का महात्म बहुत भक्ति प्रक है। उस महात्म में भागवत कब कही गई पहली बार, कहां कही गई और किसने कही, जो सामान्य जानकारी में नहीं है। प्रायः यही माना जाता है कि पहली बार सुखदेव गोस्वामी के मुख से भागवत सुखताल के स्थान पे, गंगा जी के तट पे, परीक्षित महाराज बड़े संतों की सभा में व्यासदेव और व्यासदेव के गुरु नारद और उनके पिता पराशर और पूरे ब्रह्मांड के ऋषियों के बीच में 7 दिन में कही गई। लेकिन स्कंद पुराण का महात्म कहता है कि पहली बार भागवत ब्रज में गोवर्धन की तलहटी में, गोवर्धन जो ब्रज का मध्य है, चारों ओर 5-5 कोस ब्रज है, वो ब्रज कमल की कर्णिका जो है वो गोवर्धन है और उसके मध्य सखी स्थली कहते हैं, जैसे सखी पुष्प स्थली जहाँ सखियां फूल चुनने जाती थी उसको कुसुम सरोवर कहते हैं। कुसुम सरोवर के पिछवाड़े में उद्धव क्यारी, उद्धव जी का कुंड है और इसी स्थान के ऊपर पहली बार भागवत उद्धव के मुख से 1 महीने तक कही गई। अब उद्धव अगर भागवत कहेगा तो भागवत वो पुस्तक की नहीं कह रहा है, उसने जो भगवान श्री कृष्ण के साथ जो लीलाएं अपने आंखों से देखी हैं और उन लीलाओं का वो पात्र है, वो ये भागवत कह रहा है। तो पहली बार भागवत ब्रज में और वो भी गोवर्धन में, और कुसुम सरोवर राधा कुंड श्याम कुंड से बहुत दूर नहीं है, बहुत ये अति श्री रूप गोस्वामी पाद के शब्दों में भूमंडल में सबसे पूजन्य है ब्रजमंडल, मथुरा मंडल जहाँ भगवान का प्रकट्य हुआ, उससे महान है वृंदावन जहाँ भगवान ने बाल क्रीड़ाएं की, उससे महान है गोवर्धन जिसको उन्होंने अपने कर कमल पे धारण किया, और उससे भी महान है राधा कुंड जो राधा रानी का स्वरूप है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के लिए भी अति आसक्ति का और अति मनोहर मनमोहन है, कृष्ण मनोहर है लेकिन वो राधा कुंड उसके मन को भी हर लेता है। तो ये इस क्षेत्र में भागवत कही गई है। कैसे इस भागवत का प्रकट्य हुआ, एक महीना ये भागवत कैसे कही गई, वैसे भगवान श्री कृष्ण जैसे ब्रज से बाहर नहीं जाते हैं, और जब भागवत ही भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है तो ये बाहर कैसे प्रकट होगी, इसको ब्रज में ही प्रकट होना चाहिए और फिर वहां से कहीं भी जाए लेकिन इसका प्रकट्य ब्रज में ही होना चाहिए, इसलिए उद्धव के माध्यम से इसके प्रकट्य का प्रसंग स्कंद पुराण में आता है। वो कैसे प्रकट हुआ, तब ये एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हस्तनापुर वो आज भी मेरठ के पास में है जो पांडवों की राजधानी थी, और ये दिल्ली इसको इसका नाम इंद्रप्रस्थ था, ये पांडवों के भाग में आई थी और हस्तनापुर के ऊपर धृतराष्ट्र महाराज राज करते थे और पांडवों को ये विभाजन करके दिया गया था, और कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जो मूल राजधानी हस्तनापुर थी उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण के अवतार का उद्देश्य धर्म स्थापन करना, तो भगवान ने साक्षात धर्मराज को ही इस धरती के ऊपर शासक के रूप में स्थापित किया, धर्म शब्द से नहीं धर्म रूप साक्षात भगवान को, भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस पृथ्वी का एक छत्र राजा बनाया। जब हस्तनापुर के और इंद्रप्रस्थ दोनों ही उनकी राजधानी थी, उस वक्त मथुरा मंडल को जो पहले सूरसेन महाराज की राजधानी थी, उस राजधानी का राजा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्ना उनका पुत्र अनिरुद्धा और अनिरुद्ध का पुत्र है वज्रनाभ। वज्रनाभ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जो वज्र का जो चिन्ह है उसका अवतार है, उस वज्रनाभ को मथुरा मंडल का राजा स्थापित किया। तब एक दो प्रश्न और उठते हैं, एक तो उद्धव और एक वज्रनाभ, ये दोनों यादव हैं। वज्रनाभ तो भगवान श्री कृष्ण का ही पर पोत्र है, ये तो यदुवंशी हुआ ही, और उद्धव भगवान श्री कृष्ण के चाचा के लड़के हैं तो वो भी तो यदुवंशी हैं। यदुवंशियों को तो ब्राह्मणों का शराप था, यदुवंश तो नासी हो गया था, तो फिर ये यदुवंशी कैसे बच गए। तब ये सिद्धांत समझना चाहिए, कोई ब्राह्मण का श्राप न तो भगवान और न भगवान के धाम के ऊपर प्रभाव डालता है, ये भगवान का संकल्प था कि यदुवंशी सब देवता हैं जो मेरी लीला में सेवा के सहयोग के लिए आए थे, अब मैं जा रहा हूं अपने स्वधाम, तो इन सबको अपने अपने स्थान पे भेजना है, परंतु मैं विश्व में ये सिद्ध करके जाऊं कि ये शराप तो मेरी इच्छा से था लेकिन मैं रखना चाहूं तो मेरे अपने चाचा के लड़के उद्धव को भी रख सकता हूं मेरे संकल्प से, ब्राह्मण का शराप इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और केवल उद्धव कृष्ण का घनिष्ठ सखा हरिदास वर्य भगवान का परम श्रेष्ठ भक्त, वर्य का मतलब सबसे महान वरण योग्य मंत्री भी था, कृष्ण प्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण का बहुत प्रिय है, लेकिन उससे ज्यादा भी उद्धव के ऊपर कृपा हुई है चार महीने तक वृंदावन के अंदर राधा रानी और सब गोपियों के चरणों के रज का और उसकी कृपा को प्राप्त किया है उद्धव ने। तो उद्धव के मुख से ये भागवत का प्रवाह भागवत की नित्य भगवान की इच्छा के अनुसार हुआ है। और वज्रनाभ भी जब अपनी मां के गर्भ में था उस समय सारे यदुवंशी कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के लिए आए थे, तो वज्रनाभ की माता भी आई थी और उस वक्त ब्रज से नंद बाबा के संग सारे गोप ग्वाल गोपियां भी ब्रज में आई थी। और उस समय वज्रनाभ की माता ने गर्भस्थ वज्रनाभ अभी गर्भ में ही था बहुत प्रेम से राधा रानी की सेवा की थी गोपियों के संग में। और किशोरी राधा रानी ने बड़े प्रसन्नता से कहा था, बहुरानी तेरे उदर में पलने वाला पुत्र ब्रज का राजा बनेगा और हमारे सारे लीला स्थलियों को पुनः प्रकट करेगा। आज हम सब यहां से जाते हैं वृंदावन का दर्शन करने के लिए। ये वृंदावन दो बार आंखों से ओझल और लुप्त हो चुका। पहले जरासंध के युद्ध के बाद भगवान के द्वार का जाने के बाद ये सारा ब्रज तहस नहस हो गया। भगवान की लीला स्त्रियां सारी भगवान के स्वधाम जाते कोई चोंटी तक ब्रज में नहीं रही, सभी भगवान के गृह में वापस भगवत धाम ही चले गए जहां। तो उसके बाद वज्रनाभ ने ब्रज को पुनः भगवान के लीला स्थलियों सहित कुंड बनाए, भगवान के बड़े बड़े दिव्य मंदिर स्थापित किए, जो ब्रज का आकार था उसको पुनः प्रकाशित किया। फिर काल के प्रभाव से ये वृंदावन मुगलों के शासन काल में शिकारगाह जैसा बन गया था, जंगल था, डाकू रहते थे, कोई लोग जा नहीं पाते थे। तब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदों को परिकर गोस्वामियों को भेजकर और कुछ अन्य महात्मा भी महाप्रभु की प्रेरणा से ब्रज के सारे मंदिर कुंड भगवान की लीला स्थलियां प्रकट की हैं जो आज हमको देखने को मिल रही है। तो ऐसे ब्रज भी लुप्त होता है और प्रकट होता रहता है। सो वज्रनाभ मथुरा मंडल का राजा हुआ, लेकिन प्रजा नहीं है, राज किसके ऊपर करे, वो तो सभी भगवान के साथ चले गए। तो परीक्षित महाराज जब वहां उनसे मिलने गया तो उसने कहा, परीक्षित महाराज ने कहा, राज हमारा सेना हमारी रक्षा करेगी, कोष हमारे से आपके राज का पालन होगा, आप तो यहां भगवान का भजन कीजिए। वज्रनाभ ने कहा, हम भी क्षत्रिय हैं, यदुवंशी हैं, हम अपनी रक्षा भी कर लेंगे, कोष भी बना लेंगे, लेकिन प्रजा नहीं है तो राज कहां करें। दोनों जमुना जी के तट पे जाते हैं तो कुटिया में सांडल्य ऋषि मिलते हैं। सांडल्य ऋषि नंद बाबा के पुरोहित हैं। पुरोहित का मतलब है जो पहले अपने यजमान का हित करे उसको कहते हैं पुरोहित। और हरेक को अपना पुरोहित वैदिक काल में होना अनिवार्य था। नंद बाबा का पुरोहित सांडल्य ऋषि है, यदुवंशियों का पुरोहित गर्ग ऋषि है, वृषभानु महाराज का पुरोहित भागुरी मुनि है और पांडवों का पुरोहित धौम्य ऋषि है। ये ऋषि जब तक पांडवों ने पुरोहित नहीं किया तब तक पांडव वन वन में भटक रहे थे। महाभारत में प्रसंग आता है कि गंगा के तट पे पांडव जब लाक्षागृह से निकल रहे थे तो भटक रहे थे। वो चित्ररथ गंधर्व के साथ युद्ध हो गया था, अर्जुन ने उसका रथ जला दिया। तब अर्जुन को उसने कहा, मैं आपसे बहुत बड़ा प्रसन्न हूं, लेकिन आपको सफलता तब मिलेगी जब आपको अपना कोई पुरोहित होगा। तब उन्होंने तत्काल ही धौम्य ऋषि को अपना पुरोहित चुना और तब गए और महाराज द्रौपदी की राजधानी में द्रौपदी का स्वयंवर में द्रौपदी को जीत लिया। तब वापस हस्तिनापुर में ये उनको राज मिला। तो पुरोहित पहले सबको अपना पुरोहित होता था, परंपरा में गुरु होते थे, और अब ये परंपराएं सारी लुप्त हो गई है। अब तो फैमिली डॉक्टर सबको है, लेकिन फैमिली पुरोहित नहीं है। पहले तो आध्यात्मिक उन्नति की आवश्यकता थी, अब तो शारीरिक ही रोगों से मुक्त नहीं है, तो बेचारा सबका क्या किया जाए, ऐसी स्थिति है आज की। बोली हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। सो सांड ऋषि ने कहा मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। तो उन्होंने कहा ब्रज क्या होती है? बोला ब्रज भगवान के समान है, और शास्त्रों में है कि भगवान का धाम भगवान का ही विग्रह है। वैसे धाम सारा बलराम जी का विस्तार होता है, जैसे भगवान शेष सैया पे सोते हैं ना, शेष सैया बलराम है ना, तो भगवान का धाम ही बलराम जी का विस्तार है, धाम भगवान का ही विग्रह है। और ये ब्रज में लीला दो प्रकार की होती है, एक भगवान के धाम में लीला होती है नित्य अप्रकट लीला, आज भी हो रही है लेकिन देखने में नहीं आती है। बोला किसको देखने में आती है? बोला जिसके हृदय में प्रेम है, जो भगवान से अनन्य प्रेम करता है उसके उसके सामने भगवान की लीला आज भी ब्रज में होती हुई दिखती है। जो ब्रह्म संहिता में कहा है प्रेमंजन चुरित भक्ति विलोचने संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंतम गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजार। जिसके आंखों में प्रेम है, जिसके हृदय में प्रेम प्रकट हो गया है, वो आज भी ब्रज में भगवान की नित्य लीलाओं का दर्शन करता है, कर रहे हैं, और ऐसे महात्मा आज भी है, उसका कोई अभाव नहीं है। आज भी ये छह गोस्वामी की जीवनी में भगवान की नित्य लीला के कई दृश्य प्रकट हुए। राधा कुंड पे रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर राधा रानी अपनी चुनरी से गर्मी में सूरज की रोशनी से और धूप से बचाने के लिए साक्षात राधा रानी अपनी चुनरी फैला के खड़ी है। कृष्ण हाथ में अस्त्र उठाकर बाघ कहीं पानी पीता हुआ भक्त के ऊपर आक्रमण करे, रक्षा के लिए खड़े है। ऐसी तो आंखों से लीलाएं देखी संतों के हृदय में, ऐसी बहुत सी लीलाओं का आज भी प्रकट हो रही है। तो ये नित्य लीला अनंत लीला है और ये अप्रकट है। दूसरी भगवान की लीला सांडिल्य ऋषि कहते हैं प्रकट लीला होती है, वो व्यवहारिक लीला होती है, वो अवतार काल में ही केवल होती है। और जो इन भागवत आदि ग्रंथों में भगवान की लीला है वो व्यवहारिक प्रकट लीला है। और इस लीला के श्रवण करने से भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और ये लीला कहां से प्रकट होती है? व्यवहारिक लीला नित्य लीला से ही प्रकाशित होती है, लेकिन व्यवहारिक लीला के श्रवण वर्णन से नित्य लीला में प्रवेश मिलता है। इसलिए भागवत सुनने से भगवान की नित्य लीला में प्रवेश मिलता है। तो सांड ऋषि ने कहा ऐसे भगवान की लीला नित्य तो आज भी है। और तब परीक्षित जी ने कहा कि अब मैं बहुत सारे यहां सेठ धनी और काम करने वाले भेजता हूं जो आपकी प्रजा बनेगा, और भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थलियां और जो मंदिर कुंड स्थापित करो। तो वज्रनाथ जी ने बहुत जो प्राचीन अपने हाथ से विग्रह तैयार किए थे वो आज भी गोविंद देव जी जयपुर में विराजमान है, मदन मोहन करौली में है, गोपीनाथ दहल जयपुर में है, और राधा दामोदर राधा रमन आज भी वृंदावन में है, श्री नाथ जी गोपाल जी आज उदयपुर में है, और नाथ द्वारा में ये सारे वज्रनाभ के स्थापित किए हुए, और ये मंदिर आज भी वज्रनाभ के समय के कुंड स्थापित किए हुए आज भी हैं। अब यहाँ दूसरी इस महात्म में कथा आती है, जमुना कालिंदी भगवान की पटरानी है। एक तो कालिंदी जमुना भगवान की ऐश्वर्य के पटरानी तो है द्वारका में, और भगवान के माधुर्य में ब्रज में भी जमुना है। तो कालिंदी जमुना को प्रसन्न देखकर बाकी भगवान श्री कृष्ण की रानियां जो भगवान के स्वधाम जाने के बाद ब्रह में पीड़ित थी, उन्हें पूछा कालिंदी पति तो आपका भी था, आप इतनी प्रसन्न कैसे? कालिंदी ने कहा मैंने राधा रानी का दासित्व स्वीकार कर लिया है, इसलिए भगवान की नित्य लीला में मैं आनंद रोज ले रही हूं। राधा कौन है? बोला कृष्ण आत्मा राम है, जिसकी आत्मा राधा है, जिसमें भगवान रमण करते हैं, इसलिए उसको आत्मा राम कहते हैं। राधा यस्य आत्मा, जिसकी आत्मा राधा है, जिसमें उस राधा में जो रमण करे वो आत्मा राम। भगवान आत्म आपत काम है, उसको कोई कामना है लेकिन एक कामना है, ब्रज के ग्वाल गोपी और गाय इनको भगवान प्राप्त कर होके इनको पाके आपत काम हो जाते। भगवान की कामना है तब परिपूर्ण होती है जब ग्वाल गोप और गोपियां ये उनको मिलती हैं। इसलिए मैंने तो राधा रानी का दासत्व स्वीकार कर दिया है, कहा हमको ऐसे भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कैसे मिले? बोला कोई भगवान का भागवत पुरुष भगवान की लीला का श्रवण कराए तो उसमें प्रवेश हो सकता है। बोला ऐसा कौन भागवत पुरुष है जो इस लीला का श्रवण कराए? तब कहा उद्धव। बोला उद्धव को तो भगवान ने बद्री का आश्रम भेजा था। बोला वो बद्री का आश्रम में तो भगवान नर नारायण का प्रतिनिधि तो है ही आज भी, लेकिन वो ब्रज में भी आज गुलम लता के रूप में औषधि के रूप में निरंतर निवास करता है। बोला प्रकट कैसे होगा? बोला भगवान के भक्तों को प्रकट करना हो तो भगवत नाम का संकीर्तन करो, वो अपने आप प्रकट हो जाए। भगवत नाम संकीर्तन भगवान भक्तों को प्रकट करो, जहां मृदंग बजेगा, जहां करताल बजेगी, जहां गोविंद के गुण गाएंगे, भक्त अपने आप जहां भी होंगे भागते चले आएंगे। ऐसे सवैये में कहते हैं राड़ पड़ी रजपूत छुपे नहीं। अगर लड़ाई की भैरवी बजेगी ना तो जो क्षत्रिय होगा छुपे ना नहीं, तलवार हाथ में उठा के आ जाएगा, वो रुकेगा नहीं। किसकी तरफ लड़ना है उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन लड़ाई में तो आना ही आना है क्योंकि क्षत्रिय रुक नहीं सकता है। और कहीं यज्ञ होता है तो ब्राह्मण जरूर आएगा, भंडारा है तो ब्राह्मण तो जरूर पहुंचेगा, किस कहीं भी होगा अपने आप आ जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे जहां कीर्तन होगा भगवान के भक्त कहीं भी होंगे अपने आप प्रकट हो जाएंगे। एक बार इंग्लैंड में टाउन हॉलों में कीर्तन हो रहा था, जमुना माता जी कीर्तन गा रही थी, भक्त जो पहले गए थे इंग्लैंड में प्रचार करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी की प्रेरणा से, श्याम सुंदर और मुकुंद महाराज अभी हैं, मुकुंद जानकी जमुना, तो अचानक प्रभुपाद जी बैठे हुए कीर्तन में कहने लगे चतुर्मुखी ब्रह्मा बोले हरे कृष्णा, पंचमुखी शिवा बोले हरे राम हरे कृष्णा। तो कीर्तन की ताल थोड़ी देर के लिए विक्षिप्त हो गई और फिर हरे कृष्ण कीर्तन शुरू हुआ। तो वापस जब आए तो प्रभुपाद जी से पूछा, उन्होंने कहा प्रभुपाद जी बीच में आपने ऐसे कीर्तन में ब्रह्मा शिवा क्या गाया था? प्रभुपाद ने कहा आपने देखा नहीं, शंकर नृत्य कर रहे थे, ब्रह्मा जी नृत्य कर रहे थे, नारद आदि ऋषि नृत्य कर रहे थे, आपको देखे नहीं? तो जहां भगवान के नाम का कीर्तन होता है अदृश्य रूप से ये सारे जो भागवत है वहां आ जाते हैं। हम कौन से अधिकारी है भागवत को सुनने के? हमारे अंदर भागवत का अधिकार नहीं है, ये तो भागवत पुरुष आके इस भागवत का श्रवण करते हैं। हाँ प्रहलाद प्रहलाद पुंडरीकाक्ष कीर्तन सुनने वाला है ये भीषम, ये जो महाजन है ये इस कीर्तन सुनने के अधिकारी। प्रभुपाद जी ने तो इंग्लैंड के मंदिर में, मंदिर के अंदर जहां सिंहासन है उसके ऊपर दो खाली छोटे व्यास आसन बनवा के रखे। बोला रोज शाम को गौर आरती में शुक, जब शुक शिव नारद कहते हैं तो ये बड़े महान देव यहां पधारते हैं, उनके लिए आसन होना चाहिए। तो सिद्धांत ये है, यत्र गायन्ति, यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान भी वहां प्रकट हो जाते हैं, भगवान के भक्त आए कोई बड़ी बात नहीं है, तो हरि नाम संकीर्तन हुआ है और द्वापर के युग का श्री कृष्ण जैसा सांवला रंग है और बहुत कोई 12 फुट का 10-12 फुट का आकार है, उद्धव जी प्रकट हुए। सबको बड़ा आनंद आया और उद्धव जी ने भागवत का महात्म्य शुरू किया है। इस बीच में परीक्षित महाराज को हस्तनापुर से संदेश आया कि कलयुग ने उपद्रव मचा है राज में, आपकी तत्काल वापस हस्तनापुर में उपस्थिति की आवश्यकता है। अब तो आंखों में आंसू भर के परीक्षित कहता है ये कथा मुझे फिर कब कहां कैसे मिलेगी, अब तो महात्म ही पूरा नहीं हुआ है। उद्धव ने तो आलिंगन करके कहा परीक्षित आपके लिए तो नंद नंदन ही सुख के रूप में, उनकी प्रेरणा से सुख आएगा और आपको जब भागवत सुनाएगा तब ये भागवत इस धरती के ऊपर प्रकाशित होगी। आज जो भागवत है ये तो केवल भगवान के परिकरों के लिए है, पार्षदों के लिए है, और वहां से हम पहले स्कंद भागवत में इसका दर्शन करेंगे। महाराज परीक्षित दिग्विजय करने के लिए पूरे 10 दिशाओं में चले गए थे, तब उन्होंने कलयुग के ऊपर विजय प्राप्त की थी। वहां उद्धव की कथा पूरा महीना भर चली, भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हुए और वज्रनाभ तो भगवान के विजर वज्र रूपी चरण के चिन्ह में नित्य निवास करने लगे, भगवान की रानियों को नित्य लीला में प्रवेश मिला। और तब सब ने एक प्रश्न पूछा, भगवान एक आशीर्वाद दीजिए श्री कृष्ण। बोला क्या आशीर्वाद चाहिए बोलो। और तब सब ने एक स्वर में कहा जहां आपकी ये भागवती कथा हो वहां आप प्रकट होगे, अपने भक्तों के हृदय में अपनी भक्ति को प्रकट कर देना। भगवान ने कहा तथा अस्तु। अब इस आगे इस महात्म में अद्भुत एक प्रश्न आता है, भागवत का कथा कौन करता है कौन सुनता है। तब कहते हैं तीन देव ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों निरंतर भागवत की कथा करते हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण का काम करता है, सृष्टि का काम करता है, रजोगुण उनके ऊपर प्रभाव क्यों नहीं डालता, क्योंकि भागवत की कथा 7 दिन में ब्रह्मा जी पूरी करते हैं, रजोगुण में जल्दी है तत्काल है इसलिए। और फिर ब्राह्मणी ब्रह्मा की पत्नी कथा शुरू करती है, ब्रह्मा जी सुनते हैं। और फिर भगवान विष्णु 1 महीने तक कथा करते हैं और लक्ष्मी सुनती है, और लक्ष्मी जब कथा करती है तो 2 महीने कथा, 2 महीने में कथा पूरी होती है और भगवान विष्णु आनंद से सुनते। भगवान शंकर तो इतने रसिक है 1 साल में कथा को पूरा करते हैं, और जब पार्वती कथा करती है तो 2 साल लगते, और तब तमोगुण का कार्य करते हुए तमोगुण का उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये त्रयी देव निरंतर भागवत की कथा करते हैं। उद्धव कहते हैं एक तो पाताल की परंपरा है भागवत की जो अनंत के अनंत से शुरू होती है, भगवान बलराम जी के मुख से ये कथा प्रवाहित होती है जो सांख्यायन मुनि के बाद बृहस्पति को प्राप्त होती है, और मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, इसके लिए पाताल की परंपरा का भी मैं शिशुओं और आकाश की परंपरा में साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने मुझे ये भागवत सुनाई। तो दोनों परंपराओं के अंतर्गत मैंने इस भागवत का ग्रहण किया है। तो ये भागवती परंपरा नित्य है। तो वो अब ये चार इसलिए बताया आपको इस महत्म के अंतर्गत चार वैष्णव प्रमाणिक संप्रदाय हैं। एक लक्ष्मी जी से शुरू होती है श्री संप्रदाय, तो वहां निरंतर भागवत चलती है। तो ये भागवत संप्रदाय हुई, वैष्णव हुई। एक संप्रदाय भगवान शंकर से चलती है, रुद्र शंकर संप्रदाय, जिसमें विष्णु स्वामी और वल्लभ आचार्य जी आए, ये भागवती संप्रदाय हो गई। एक संप्रदाय ब्रह्मा जी से शुरू होती है, जिसमें मध्वाचार्य आए, जिसको चेतना महाप्रभु ने स्वीकार किया, मध्व गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, वो ब्रह्मा जी भागवत कथा करते हैं। और एक अनंत की तो परंपरा ही है शेष नाग की, जिससे चौथी परंपरा चलती कहां से है? श्री संप्रदाय लक्ष्मी की, ब्रह्मा की संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और चौथी कुमार संप्रदाय का किस कहां से सुन के आए? चारों कुमार शेष से, वो शेष से चार कुमार सुन के आए। वैसे चार शेष कुमार सुन के आए, चार कुमारों ने भागवत की है, वो स्कंद पुराण में नहीं, वो पद्म पुराण के महात्म्य में सनक आदि ऋषियों ने हरिद्वार में जहां सप्त ऋषियों के लिए सात धाराओं में गंगा बहती है, वहां सनक आदि ऋषियों ने नारद को भागवत सुनाई। तो वो भी भागवत की परंपरा है। तो चारों वैष्णव संप्रदाय भागवत संप्रदाय है। ये भागवत मार्ग की विधि है। और जो संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है वो धर्म के तत्व को जान नहीं सकता। वो मंत्र भी अपना प्रभाव नहीं दिखाता है जो मंत्र परंपरा के अंतर्गत नहीं आता। बंदूक की गोली किसी बच्चे के हाथ में हो, किसी को मारे तो कोई चोट लगेगी क्या? हाँ, छोटी तो गोली होती है। अगर वो बंदूक के अंदर से, पिस्तौल के अंदर से किसी को मारेंगे तो घाव करेगी ना। तो ऐसे कोई भी मंत्र वंतर है वो उस गोली की तरह है जो बच्चे के हाथ में, कोई अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। जब तक परंपरा का पिस्तौल हाथ में नहीं होगा तब तक उसका प्रभाव नहीं होगा। वो प्रभावशाली तब होता है जब परंपरा से कोई चीज आती है। तो परंपरा का बहुत बड़ा महत्व है। परंपरा की रक्षा भगवान ने की है। एवं परंपरा प्राप्तम राज ऋषियो विदु सकाले ने महता योगो नष्ट परंतप। इसके बाद भागवत के श्रोता और वक्ता, चार प्रकार के उत्तम श्रोताओं का वर्णन। एक चातक श्रोता होते हैं, भले कैसा भी जल हो नहीं पिएंगे, जब तक स्वाति नक्षत्र में जल बरसेगा तब पिएंगे, तब उनके पेट में मोती बनता है। तो वो तो केवल कृष्ण कथा सुनने के अलावा और कोई कथा सुनने में उनको रुचि ही नहीं। आप भले उनके सामने कुछ भी कहो, वो तो एक ही बात है कि हमको तो भगवत कृष्ण कथा सुननी है, और कहीं उनका सर हिलेगा नहीं। दूसरे चातक हंस श्रोता, कहीं भी कुछ कथा में हो वो तो हंस की तरह नीर से खीर को अलग कर देते हैं, वो कुछ बाकी चीजें नहीं जो भगवत संबंधी चीजें हैं उन्हीं को ग्रहण करते हैं। फिर शुक श्रोता हैं, जो बड़े मीठे आवाज में जो सुनते हैं, दूसरों को बताते हैं, दूसरों का हित करते हैं। और मीन श्रोता, आंख से आंख मिला के बैठते हैं, और जैसे मछली समुन्द्र से बाहर नहीं रखती है ऐसे वो हरि कथा से बाहर रह नहीं सकते। ये उत्तम कोटि के चार श्रोता हैं। और चार निम्न कोटि के श्रोता हैं, वो आप में से तो कोई है नहीं, बताना भी आवश्यक नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए एक भ्रूंड नाम का और एक भेड़िया है। वो क्या करता है? कथा के बीच में जोर जोर से बिले बोलेगा, झगड़ा करेगा, सबके बीच में विक्षेप डालेगा, कथा सुनने वाले उठ के चले जाएंगे। ऐसे आते हैं बीच में कुछ ना कुछ करने के लिए। और एक दूसरा है, कहने को तो सबको कहेगा कथा सुननी चाहिए, लेकिन स्वयं नहीं आएगा। वो कहेगा लेकिन पालन नहीं करेगा। और तीसरा है उष्ट श्रोता, ऊंट। वो भले उनको सुंदर अंगूर का दो ना खाने को, फिर भी कांटे ही खाएगा, अंगूर को नहीं खाएगा। और हड्डी जैसे कुत्ता खाता है, तो हड्डी से कुत्ते का मुंह सारा फट जाता है और 7 दिन रोटी भी नहीं खा सकता है, लेकिन अपने खून को खा के खुश होता है। ऐसे ऊंट कांटे वाली झाड़ी से अपना ही खून खाते हैं। वो श्रोता कितना अच्छा कथा बताओ, अरे महाराज के बाल बड़े थे, महाराज की चोटी ठीक नहीं थी, महाराज तो आसन के ऊपर सीढ़ी पे चढ़ भी नहीं सक रहे थे, वो कथा में कुछ नहीं सुनेंगे, बाकी ये जो त्रुटि बत के बोल दिया वो उसको पकड़ के बैठ जाएंगे। और चौथे बैल श्रोता लिखा है, उनको चाहे खली दो चाहे अंगूर दो, वो कहेंगे बहुत अच्छा है बहुत, किसी की कथा में जाएंगे सर हिलाते रहेंगे, और उसको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या है। ये भाग, ये स्कंद पुराण के श्रोताओं का वर्णन है। और फिर श्रोता वक्ता की एक और श्रेणी बताई गई है, कृष्णार्थी वक्ता और कृष्णार्थी श्रोता अगर हो तो फल बहुत अच्छा होता है। जो कथा करने वाला हो, पहले तो वो हो ही कृष्णार्थी, उसका जीवन का लक्ष्य भगवान कृष्ण की भक्ति हो। और वक्ता का दूसरा लक्षण है वो निरपेक्ष हो, किसी से कुछ इच्छा आशा न रखियो कि मुझे किसी से कुछ मिलेगा तो मैं कथा करूंगा, ये होगा तो कथा करूंगा, वो होगा तो कथा करूंगा, निरपेक्ष होना चाहिए। तीसरा, वक्ता कृष्णार्थी जो है वो सौहृद होना चाहिए, सबका हित करने की कामना हो। और चौथा, दीनपाल होना चाहिए। बड़े बड़े शहरों में महानगरों में लोग लाखों खर्च करके कथाएं कराते हैं, उन कथाओं को प्रायः रजोगुण की कथा कही जाती है भागवत के अंतर्गत, जिसमें ताबड़तोड़ कथा करे, दिखावा ज्यादा हो, कथा का महत्व हो नहीं, और आधा छोड़े आधा बोले, वो रजोगुण की कथा कहलाती है। जहां वाकई भगवान की कथा के प्रचार की जरूरत है, प्रभुपाद जी ने कहा बैलगाड़ियां लेके गांव गांव में जाके प्रचार करो, उसको बोलते दीनपाल भाव होना चाहिए। वो कृष्णार्थी वक्ता हो और श्रोता भी कृष्णार्थी हो, जिसका मन कृष्ण भक्ति का हो, तो भागवत में से रस आएगा। दूसरा होता है धनार्थी वक्ता, धनार्थी श्रोता। धनार्थी का मतलब है मैं भागवत कथा कराऊंगा, मेरा धंधा बढ़े, मेरा दुकान चले, मेरा ये काम हो, मेरा वो काम हो। अगर स्वार्थ वाला कथा कराने वाला है और कथा करने वाला कृष्णार्थी है तो कथा में रस नहीं आएगा। और कथा करने वाला कहीं धनार्थी है तो घूमा फिरा के थोड़ी देर के बाद बोलेगा अब रुखुणी विवाह में बहुत अच्छा जहेज के लिए टीवी फ्रिज लाना, कथा में कुछ नहीं कहेगा, घुमा फिरा के कहेगा अब कृष्ण जन्म है तो यशोदा माता जी को तो कानों में कुंडल तो आपको धराने पड़ेंगे, हाँ माँ उंगली में अंगूठी डालनी पड़ेगी, नंद बाबा की तो आपको घड़ी लानी पड़ेगी। अब नंद बाबा के पास भले घड़ी हो ना हो, लेकिन वो धनार्थी जो 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 वक्ता होता है वो बार बार घुमा फिरा के पथा कथा यही करेगा, कल सुधामे के चावल घर से बोरी बोरी लेकर आना, और परसों अब वामन देव का चरित्र आ रहा है तो वामन देव को सबको छाता लाना है, दान देना है, तो ये तो जो जो बेचारे निस्वार्थ भक्त आएंगे कथा सुनने वाले, वो कह उनको कथा में कृष्णार्थी भक्त कथा में बैठ नहीं पाएगा, चला जाएगा। फिर प्रायण भागवत का रजोगुण का बताया, तमोगुण का, सतोगुण का और निर्गुण। 7 दिनों में भागा दौड़ी वाले प्रायण को राजा को रजोगुण का प्रायण का, 1 महीने तक भागवत की कथा हो तो उसको सतोगुण की कही गई है। और आजकल होने वाली कथा जिसमें गाते गाते 2-4 स्कंदी बीच में कूद के चला जाए, कभी कहे कभी नहीं कहे, उसको तमोगुण की कहते हैं। और जो निरंतर न महीने का विचार न साल का विचार, न कुछ इच्छा हो न कुछ कामना हो, केवल कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए निरंतर कथा कहे, उसको निर्गुण प्रायण कहते हैं। और श्रील प्रभुपाद ने कृपा करके सब मंदिरों में प्रतिदिन भागवत का नित्य सेवा जो सालों तक चल रही है, ये निर्गुण पारायण है। इसमें न कथा करने वाले को किसी से कुछ मांग लेने के लिए कथा करता है, न सुनने वाला ही कुछ पाने के लिए आते हैं। ये निरंतर भागवत नित्य भागवत सेवा है। तो यहां स्कंद पुराण का महत्व एक दृष्टि से पूर्णाहुति पे पहुंचता है। पद्म पुराण के महात्म में कलयुग का घोर जो प्रभाव है उसको नारद ने भारत भूमि के सब तीर्थों में देखा। तीर्थों के अंदर इतना धर्म का लोप हो गया है कि लोग तीर्थों में जाते हुए डरते हैं। व्यवसाय जैसा वातावरण हो गया, श्रद्धा लोगों के हृदय से कम कर की जा रही है तीर्थों में। यह कलयुग का प्रभाव है। तो नारद बहुत दुखी हो गए कलयुग को, चारों ओर से कलयुग के ऐसे प्रभाव को देखकर। बहुत बड़ा कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन है वहां। नारद वृंदावन में आए तो जो भाव रूप भक्ति है वो उनको मूर्तिमती दर्शन हो गया। नव युवती मूर्ति के, नव युवती के रूप में भक्ति वहां विराजमान थी और उसकी गोद में दो बूढ़े से बच्चे पड़े हुए थे। तो नारद को आश्चर्य लगा, बोला देवी आप कौन हो, ये बालक कौन है? भक्ति कहती है, हे दिवऋषि आपके आने से मुझे कुछ सुख मिला है। आप तो जानते हैं मैं भक्ति हूं, ये मेरे दो बालक हैं ज्ञान और वैराग। मेरी उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई। ये जो 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 मध्यकाल समय है जिसमें भक्ति का आंदोलन चला है भारत में, ये दक्षिण भारत में मध्व आचार्य रामानुज आचार्य ने इसका उद्घाटन किया है। तो वहां से मैं प्रकट हुई, कर्नाटक में लोगों ने मेरा सम्मान किया, महाराष्ट्र में भी तुकाराम जैसे बहुत भागवत भक्त मिले, लेकिन गुजरात पहुंचते पहुंचते मैं जर्जर हो गई, मेरा कोई पालन करने वाला नहीं मिला। मैं ब्रज में आई तो मेरे को तो मेरा स्वरूप प्राप्त हो गया, यहाँ भक्ति के स्वरूप हो गया, लेकिन ये मेरे दोनों बालक वृद्ध हो गए। नारद का भक्ति भगवान गोविंद ने आपको मुक्ति तो दासी के रूप में दे दिया था, जिसको आप चाहो उसको दे सकती हूं, लेकिन कोई मुक्त होने के लिए अब रह नहीं गया तो मुक्ति वापस वैकुंठ चली गई। आप बुलाती हो तो आती है, और हे भक्ति देवी आप जिसके हृदय में विराजमान हो जाओ तो गोविंद को गोलोक से बुला के उसमें बिठा सकती हो। आपको मैं नारायण का शिष्य नारद वचन देता हूं, अगर जन जन तक गांव गांव तक कान कान तक आपको मैंने नहीं फैलाया तो मैं नारायण का शिष्य हूं, ये मैं वचन देके जाता हूं, और ये आपके बालकों को भी मैं अभी सचेत कर लूंगा। नारद ने बच्चों को हिलाया, बच्चे आंख खोल के बंद कर दें, पूरे वेद का पाठ किया, गीता भी पढ़ के सुनाया, बच्चे उठ के बैठे फिर सो जाएं। नारद को चिंता हो गई, ये सब शास्त्रों का सार सुना दिया, बच्चे जागे नहीं। नारद अपने गुरु के आस्थान, नारद का गुरुदेव का आस्थान है बद्रिक आश्रम, बद्रिक आश्रम नारद का आराध्य आस्थान है, और नारायण के चरणों में जाके प्रार्थना की। भगवान ने कहा साधु संतों से मार्ग मिलेगा, और बाहर निकले हैं तो विशाला नगरी, वहीं उनको चार उनके कुमार सनक आदि कुमार ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र उनके ब्रह्मा नारद के बड़े भाई मिले। कुमार ने कहा सनातन कुमार सनंदन कुमार ने कहा हे नारद ऋषि आप जहां जाते हैं वहां उत्सव होता है, वहां कीर्तन होता है, अभी आप ही इतने विचलित क्यों दिखाई दे रहे हैं, आपके चेहरे के ऊपर उदासी क्यों है? नारद कहता है हे कुमारो मैं संकट में पड़ गया, भक्ति को वचन दे के आया था, कि उनके दो पुत्र ज्ञान और वैराग को मैं परिपुष्ट करूंगा। मैंने हिलाया, वेद गीता सुनाया, लेकिन वो जागे नहीं। खचार कुमार हंसते हुए कहने लगे, नारद आपको तो सब जानकारी है, आप तो जानते हैं, आपको भागवत सुनाना चाहिए था, आप तो भागवत परंपरा के आचार्य हैं। नारद ने कहा, क्या अंतर है भागवत में और वेद में, अंतर क्या है, एक ही बात तो है। सनक आदि ऋषि कहते हैं, आप ठीक कहते हैं, अंतर सिर्फ इतना है कि आम के सारे पेड़ में आम का रस होता है कि नहीं होता है। बोला होता है। तो क्या पेड़ में चाकू मारने से रस निकलेगा? बोला नहीं। तो फिर आम का रस पीना हो तो आम के पेड़ में नहीं मिलेगा, आम के पके हुए फल में मिलेगा। ऐसे वेद कल्प वृक्ष है, लेकिन उसका पका हुआ फल भागवत है। तो वेद से रस नहीं मिलेगा, भागवत से रस मिलेगा। गाय में दूध तो पूरी गाय के अंदर होता है, लेकिन चाकू मारने से खून निकलेगा, दूध नहीं मिलेगा, स्तन से दूध मिलेगा। एक आदमी की गाय बीमार हो गई, किसी ने कहा, भैया तू ये दवा मक्खन में डाल के देना। वो कंजूस था, बोला मक्खन तो गाय से ही निकालते, मक्खन तो अंदर ही पड़ा होगा, तो दवाई दे देते हो, गाय मर गई। बोला ये क्या हो गया? बोला आपने कहा था मक्खन से देना, मैंने बोला मक्खन तो वैसे भी गाय से रोज दूध से निकालते, अंदर पड़ा होगा, तो सिर्फ दवाई दे दी तो गाय मर गई। तो ये सुन लो नारद जी, अब आप ऐसा करो, भागवत हम आपको सुनाते हैं, आप यजमान बन जाओ। और तब सप्तऋषि आश्रम में नारद यजमान बना है, सब ऋषियों को प्रेम से मना के लाया है, और भागवत की कथा का महात्म शुरू हुआ। तो नव युवती नारी और उसके साथ दो नौजवान बच्चे प्रकट हो गए और नाचने लगे। सब आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं, ये ज्ञान नाच, कौन नाच रहे हैं, कौन हो, पूछा सनक आदि ऋषियों ने। तो कहा, मैं भक्ति हूं, ये मेरे दो पुत्र ज्ञान और वैराग हैं, ये नृत्य कर रहा है, ज्ञान भी नृत्य कर रहा है, वैरागी भी नृत्य कर रहा है, भगवत भक्ति में कहां से प्रकट हुए? बोला इस भागवत से प्रकट हुए। और भक्ति ने पूछा, कहां बैठूं मैं महाराज, मेरे लिए आसन कहां है? सनक आदि ऋषियों ने कहा, इन भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। और भागवत के इस कथा में फिर तो नारद तो कथा सुन ही रहे थे, प्रहलाद प्रकट हुए हैं, इंद्र प्रकट हुए हैं, सुखदेव प्रकट हुए हैं, बहुत बड़ा महान संकीर्तन हुआ है। तब प्रश्न पूछा जाए, ये तो पुराने जमाने में सब भागवत का महात्म है, कोई कली काल में किसी का उद्धार भागवत में किया है, इसका कोई उदाहरण है क्या? तब उदाहरण देते हैं आत्मदेव ब्राह्मण का, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे पे रहता था। उसकी पत्नी बहुत दुष्ट थी, उसका नाम धुंधली था, पुत्र संतान नहीं था, महात्माओं ने कृपा करके फल दिया, लेकिन धुंधली ने कहा कि मैं फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, बड़ी पीड़ा होगी, मैं नहीं खाऊंगी। उसने गाय को दे दिया, लेकिन एक और उसकी सहेली जो गर्भवती थी उसको कुछ पैसे दे के कहा, तुम्हारा बच्चा मेरे को देना। और धुंधली कपड़ा पेट में डाल के और नाटक करने लगी गर्भवती होने का। समय आने के ऊपर बालक तो हुआ, उसकी सहेली का उस जैसी ही थी, उसने अपने पति को कहा बच्चा मर गया, और बच्चा दे दिया धुंधली को। धुंधली ने कहा मेरा बालक हो गया, तो आत्मदेव ने कहा मेरा पुत्र है, इसका नाम ब्रह्मदेव रखते हैं, मैं आत्मदेव। बोलो क्यों, तुम्हारा नाम क्यों रखूंगी? मेरा नाम रखूंगी, मैं धुंधली हूं, ये धुंधकारी होगा। जबरदस्ती किया उसने। और गाय ने भी समय आने के ऊपर एक सुंदर बालक को जन्म दिया, संत का दिया हुआ फल निष्फल नहीं जाता है, उसका नाम गोकर्ण हुआ। गोकर्ण भागवत भक्त था, और ये धुंधकारी बड़ा दुष्ट था। थोड़ा बड़ा हुआ तो पिता को सताया, पिता दुखी हुआ, गोकर्ण ने उसको उपदेश दिया, और दसम स्कंद भागवत का पाठ करने के लिए चला गया। और यहां धुंधकारी ने वैश्याओं को घर में लाके रखा, अपनी मां को तो जलती हुई लकड़ी से मारने लगा, मां तो कुएं में कूद गई। और चोरी करके राजा का माल जब लाया धुंधकारी, तो वैश्याओं ने कहा कल हम पकड़े जाएंगे तो हमको भी दंड जेल में डालेंगे, इससे जुंधकारी को ही मार देते हैं। रात को उसको मारा, काटा, जला दिया और चारों ओर ये समाचार दे दिया कि हमारा पति परदेश कमाने गया। ये धुंधकारी बहुत बड़ा प्रेत हो गया। गोकर्ण भ्रमण करते हुए अपने पिता के पूर्व घर में आए तो देखे तो किसी वक्त भैंसा दिख रहा है, कोई हाथी दिख रहा है। अरे कौन हो तुम? मैं तेरा भाई हूं, धुंधकारी हूं, बड़ा प्रेत बना हूं, मेरा भाई, मेरा उद्धार करो। अरे हमने तो गया में हमारे पूरे वंश का उद्धार किया है। बोला हम ऐसा प्रेत नहीं है जो गया में जाऊं, आप कोई और साधन कीजिए, मैं बड़ा दुखी हूं प्रेत योनि में। तो फिर गोकर्ण ने भगवान सूर्य को या प्रार्थना की, सूर्य भगवान ने प्रेरणा दी कि भागवत का अनुष्ठान करो। तो ये भागवत की कथा गोकर्ण ने आयोजित की और तब सूर्य देव से पूछा कि इस कथा का प्रभाव, मेरा भाई ये धुंधकारी उधार हो गया, मुक्त हो गया, कैसे पता लगेगा? बोला कथा स्थल के ऊपर एक बांस का पेड़ टांग देना, उसके अंदर गांठें जो हैं, प्रतिदिन कथा में एक गांठ फूटती जाएगी। कथा शुरू ही, बहुत से लोग कथा सुन रहे थे, रोज की एक गांठ बांस की फूटती। सातवें दिन दिव्य विमान आया है वैकुंठ से और धुंधकारी मुक्त होके विमान में चढ़ के जा रहा है। तब तो गोकर्ण ने कहा कथा तो बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, एक विमान क्यों लाए? बोला बाकी कथा में प्रसाद खाने वाले थे, यही वैकुंठ जाने वाला था, तो प्रायः कथा में आने वालों के भावों को भगवान जानता है कि सबके हृदय में बैठा है परमात्मा के रूप में, वो किसी से पूछने की भगवान को जरूरत नहीं है। लेकिन गोकर्ण ने ना कहा नहीं नहीं, एक बार कथा में आया, ध्यान नहीं दिया तो कोई बात नहीं, फिर एक दूसरी कथा का आयोजन किया और इस गाय माता के द्वारा प्रकट किए हुए पुत्र ने वो काम करके दिखाया जो 24वीं चतुर्युगी में भगवान रामचंद्र ने सारे अयोध्या वासियों को अपने धाम ले गए। इस कथा के अंदर गोकर्ण सब कथा वालों को भगवत धाम ले गए। फिर कथा की विधि विधानों का वर्णन है, यहाँ दोनों महात्मों को प्रणाम करते हैं। ये दो भागवत के महात्म है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। और भी बहुत सी बातें महात्म्य की आएंगी तो रोज प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा इसका श्रवण वर्णन करते हुए चलेंगे और थोड़ी कथा को आगे बढ़ाएं। समय क्या कहता है? हरे कृष्णा। अब श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय हैं। पहले स्कंद के पहले 3 श्लोक को श्रीमद् भागवत का व्यास देव कृत मंगलाचरण, और मंगलाचरण शास्त्र में 3 जगहों पे होता है। मंगलाचरण प्रथम 3 श्लोकों में है, मंगलाचरण के श्लोक बीच में 10 स्कंद में है और 12 स्कंद के अंत में भी मंगलाचरण के श्लोक है। इस भागवत में सूत गोस्वामी का मंगलाचरण है जो हम रोज गाते हैं, नारायण नमस्कृत्य में सूत गोस्वामी का मंगलाचरण। दूसरे स्कंद के 4 अध्याय में सूत गोस्वामी का मंगलाचरण है कोई 13 श्लोकों में। तो मंगलाचरण त्रिविध प्रकार, 3 प्रकार का मंगलाचरण के 3 वस्तु निर्देश नमस्कार आशीर्वाद। मंगलाचरण का मतलब होता है कि ये कार्य जो हम शुरू करें हैं ये निर्विघ्न पूरा हो। और उस मंगलाचरण में एक तो होता है विषय वस्तु का निर्देश कि इस शास्त्र में विषय क्या है, दूसरा होता है नमस्कार अपने आराध्य देव को, और तीसरा होता है आशीर्वाद। और हर एक कार्य करने से पहले मंगलाचरण करने का विधान है। तो पहला श्लोक श्रीमद् भागवत का उसमें विषय वस्तु का निर्देश है। क्या है भागवत का विषय? सत्यम परम धीमहि। धीमहि का मतलब हमारी बुद्धि। ये बहुवचन में है। व्यासदेव कहता है मैं हमारी भविष्य में भागवत श्रवण करने वाले सबकी बुद्धि परम सत्य में लगे, परम सत्य का वो बुद्धि वर्ण करे। नाम नहीं लिया है कृष्ण का वर्ण करे, नारायण का वर्ण करे, हरि का वर्ण करे, परमात्मा का वर्ण करे, नहीं, परम सत्य का वर्ण करे। ये हमारी बुद्धि। और ये गायत्री का सत्यम परम धीमहि, ये गायत्री का उल्लेख है वेदों में। गायत्री में धीमहि है। तो ये सत्यम परम कौन है? तो मध्यम जो मंगलाचरण है दूसरे दशम स्कंद के दूसरे अध्याय में, और ये श्लोक शंकर और ब्रह्मा आदि देवों के मुख से निकला है, सत्यव्रतम परम सत्यम। उसमें सत्य शब्द कई बार आया है, और ये गर्भ स्तुति में है जो भगवान श्री कृष्ण को ही स्तुति की जा रही है। वो स्तुति भगवान श्री कृष्ण को की जा रही है, इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं सत्यम परम भगवान श्री कृष्ण को। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण को भगवान न कहकर परम पुरुष भगवान कहा है। परम पुरुष भगवान का मतलब सारे अवतारों का स्रोत। तो सत्यम परम का क्या अर्थ है? भगवान अपने सारे विस्तारों और शक्तियों के सहित, भगवान अपने सारे अवतारों विस्तारों और शक्तियों सहित, तो उसको कहते हैं परम सत्य। इसलिए भागवत में जहां अवतारों का दो, पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में और दूसरे स्कंद के सातवें अध्याय में, जहां एक जगह 22 एक जगह 23 ऐसे करके सब मिला के 24 अवतारों का वर्णन है, इदम भागवत नाम पुराणम, वहां कहा है भागवत का मतलब है भगवान के अवतारों की कथा। तो सत्यम परम का मतलब भगवान श्री कृष्ण और उसके सारे अवतार और विस्तार। विस्तार इसलिए कहते हैं कि वैकुंठ में नारायण के जो विस्तार हैं वो भी उसके अंतर्गत आ जाते हैं, और अवतार जो धरती के ऊपर आते हैं, अन्य ब्रह्मांडों में आते हैं, वो अवतार हैं और विस्तार हैं, और भगवान की सारी शक्तियां अंतरंग शक्ति के अंतर्गत राधा रानी आ जाती है, राधा रानी के अंतर्गत सारी लक्ष्मियां आ जाती हैं, सारी गोपियां आ जाती हैं, और सारी द्वारका की रानियां आ जाती हैं। और फिर तटस्थ शक्ति के अंतर्गत हम सारे जीव आ जाते हैं, चल अचल सारे जीव आ जाते हैं, और बाहर अंग शक्ति के अंतर्गत सारा ये भौतिक जगत आ जाता है। तो भौतिक प्रकृति जड़ चेतन सब भगवान, परम सत्य का मतलब सबका स्रोत। ऐसे कहकर परम सत्य विषय वस्तु परम सत्य है, और परम सत्य वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। और पहला शब्द ही है ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि यत इतर तस अनव्या। पहला शब्द है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं भगवान श्री कृष्ण जो सर्वत्र व्यापक वसुदेव के घर में प्रकट हुए और सर्वत्र व्यापक है, उसको नमस्कार करता हूं। वो कैसे हैं? जन्मादि जो इस प्रकृति, ये जन्मादि वेदांत सूत्र है। पहले मंगलाचरण में वेदांत सूत्र है, सृष्टि है, गायत्री है, ये सारे ही एक जगह पे रख दिया है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। भगवान जिनसे जन्म आदि का मतलब जन्म, फिर पालन और प्रलय, जन्मादि यस्य जिसके द्वारा ये सारी, इसलिए जो मंगलाचरण महात्म्य है उसमें है सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमो। ये मंगलाचरण है पद्म पुराण के महात्म का। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का रूप सत्य चित्त आनंद है। आनंद चाहिए तो भगवान के रूप का दर्शन, नाम का दर्शन, धाम का दर्शन, लीला का श्रवण, नित्य हरेक रहना चाहता है, क्योंकि भगवान के अंश है इसलिए नित्य रहना चाहता है, सुखी रहना चाहता है, आनंद में रहना चाहता है, सदा रहना चाहता है। ये जो हमारे अंदर सदा रहने की भावना है, आनंद में रहने की भावना है, सब कुछ जानने की भावना है, ये भगवान के अंश होने के नाते है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे, इस पूरे विश्व की उत्पत्ति का हेतु भगवान है। तापत्रय विनाशाय, जो भगवान के शरण में जाते हैं उनके सारे ताप संताप संकट विनाश हो जाते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को वयम हम सब नमो नमस्कार करते हैं। तो ये मंगलाचरण, वो दो मंगलाचरण दोनों मिलाएंगे, और स्कंद पुराण का मंगलाचरण भी ऐसे ही सच्चिदानंद रूपाय है, लेकिन उसमें भगवान के रस, भक्ति रस का पान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ये तीनों मंगलाचरणों को मिलाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण भागवत के, भागवत का विषय वस्तु है। कैसे हैं ये भगवान? अभिज्ञ, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, उनसे कोई चीज छुपी हुई नहीं है। और स्वरात, वो स्वतंत्र है, वो सबके कारण है लेकिन उनका कोई कारण नहीं है। वो अपने आप में स्वतंत्र हैं, स्वरात हैं, सबके कारण हैं, लेकिन वो उनका कोई कारण नहीं है। वो आदि पुरुष हैं और सबको जानते हैं। हम विचार करते हैं, देखिए तो लाखों में दो की शक्ल आपस में नहीं मिलती है, अंगूठे के निशान नहीं मिलते हैं। कितने भगवान हरेक के कर्मों का भाव जानते हैं और उसके विचार हरेक के अलग है। खोपड़ी खोपड़ी मत न्यारी, हरेक खोपड़ी के अंदर अलग विचार पड़ा है। इतना बड़ी वैरायटी बनाई है, कितना भगवान अभिज्ञ है, सब चीजों को जानने वाला है। और भागवत गीता जहां पूरी होती है वहां लिखा है सर्वधर्मान परित्यज, सारे कुल धर्म जाति धर्म इन सब का परित्याग करके जो आत्मा का धर्म है, जो आत्मा का धर्म है उसका आश्रय ले लो। स्वधर्म वर्णाश्रम धर्म कुल धर्म जाति धर्म इन सब को छोड़ के जो आत्मा का धर्म है उसका शरण लो। असल में तो जहां भगवत गीता पूर्ण आहुति पे पहुंचती है, भागवत वहां से शुरू होती है। इसलिए दूसरे श्लोक में धर्म प्रोजत कैतव निर्मत्सराणाम परम, जो भी कैतव धर्म है, कैतव धर्म का मतलब सर्वधर्मान परित्यज, जो ग्रहण करने वाले धर्म नहीं है उन सबको भागवत से निकाल दिए। वो कौन से हैं? पहला है स्वर्ग प्राप्ति वाला धर्म, ये कर्म कांड का धर्म है, इसको कहते हैं सामान्य धर्म, जिसमें लोग पूजा पाठ करके स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। दुनिया के अंदर जितने भी मजहब हैं वो सब स्वर्ग तक की पहुंचा जाने के लिए ही उनका, हमारे पास भी कहते हैं स्वर्गवासी हो गया। और दुख तब होता है जब हमारे किसी रिश्तेदार की मृत्यु होती है और हम चिट्ठी लिखते हैं अपने संबंधियों को, बड़े दुख से कहना पड़ता है कि दादाजी का स्वर्गवास हो गया, क्योंकि लाने जाने के लायक नहीं होता, इसलिए दुख हो रहा है क्या? ये कोई लिखने की शैली कैसी है कि बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हमारे दादाजी का स्वर्गवास हो, क्योंकि जाने के लायक नहीं था, गलती हो गई। ऐसे नहीं लिखना चाहिए कि हमारे को दुख है कि दादाजी से हमारा वियोग होगा, हो गया, भगवान उनको स्वर्ग दे फिर तो ठीक है, हम कहें स्वर्गवास हो गया इसलिए दुख हो रहा है, ये लिखनी गलत है। ये लिखना ही ऐसे लिखना बहुत गलत हो जाता है, इसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ये कोई बच्चा शादी ताजी करके आया, दोस्तों ने पूछा सुनो भाई तुम्हारा घर तो अभी स्वर्ग हो गया होगा, बोला घर स्वर्ग हो गया लेकिन मैं स्वर्गवासी हो गया। बच्चे स्वर्ग में रहेगा तो वो स्वर्गवासी होगा और क्या होगा। तो स्वर्ग प्राप्ति वाला धर्म धर्म कहलाता है, मोक्ष प्राप्ति वाला धर्म जो है वो ज्ञानियों का होता है, मोक्ष प्राप्ति वाला धर्म उसको थोड़ा धर्म से ऊपर कहते हैं। धर्म प्रोजित कैतव, और उसके ऊपर है वैकुंठ प्राप्ति वाला धर्म, वो मोक्ष के अंतर्गत आता है, लेकिन उसके ऊपर है परो धर्म। तो भागवत में सर्वधर्मान परित्यज्य के बाद परम धर्म का निरूपण किया गया है। वो परम धर्म क्या है? वासुदेव भगवती भक्ति योग, ये परम धर्म है। परम धर्म क्या है? जिसको नारद ने भक्ति सूत्र में लिखा है, प्रेम रूपा, प्रेम रूपा यथा व्रज गोपिका। परम धर्म की परिभाषा है प्रेम रूपा, जिसमें प्रेम उसका रूप है प्रेम। बोला कैसे? जैसे व्रज की गोपिका, ये है परम धर्म। और भागवत के अंदर परम धर्म का निरूपण है। धर्म प्रोजित कैतव नित निर्मत्सर, ऐसे धर्म का पालन करने वाले की पहचान क्या है? निर्मत्सर। मत्सर कहते हैं ईर्ष्या को, जलन को, इनके हृदय में जलन नहीं होती, ये सबका हित करना चाहते। तो ईर्ष्या रहित द्वेष दृष्टि जिसकी हो ही नहीं, वही इस परम धर्म का अधिकारी है। दूसरे को भगवान से मिलाने का जिसकी चेष्टा हो, भाई हम तो सभी स्वयं मिलना चाहते हैं, दूसरे को पीछे हटाते हैं। दुनिया का नियम ये है, ये जगह मुझे मिले, दूसरे को पीछे करो। और परम धर्म में दूसरे भगवान के पास जाएं, हम उनको आगे बढ़ाएं, भगवान से मिलाएं, ये परम धर्म है। ये कथा कीर्तन प्रभुपाद जी यहां से परम धर्म का प्रचार करने गए थे। अमेरिका में जब पहुंचे तो लोगों ने कहा, महाराज धोती पहन के आए हो, हाथ से खाते हो, ये अमेरिका में चलेगा नहीं। ये मिश्रा जी ने कहा, जो योग सेंटर चलाता था। प्रभुपाद ने कहा, आप ठीक कहते हैं मिश्रा जी, हमारे देशों से जो लोग अमेरिका में आते हैं, धन कमाने आते हैं या विद्या प्राप्त करने आते हैं, तो उनको इन जैसा कोट पैंट पहन के टाई पहननी पड़ती है, कांटे चमचे से खाना पड़ता है, लेकिन मैं न तो विद्या प्राप्त करने के लिए यहां आया हूं और न ही कुछ मैं धन कमाने आया हूं, मैं तो इनको संस्कार देने आया हूं, मैं इनको सुख देने आया हूं। अगर इनको सुख और संस्कार चाहिए तो फिर इनको मेरे जैसा होना पड़ेगा, मैं इन जैसा क्यों? मैं पैंट नहीं पहनूंगा, इनको धोती पहनाऊंगा। अंग्रेज हमारे सबकी धोती उतार के ले गया, पैंट दे गया। पहले तो पगड़ी हमारी कहीं चली गई, पहले तो हमारी पगड़ी उतारी तो इसका मतलब हमारा देश ले गए। पगड़ी पहले से ही हमारी उतार दी, देश गया, और फिर धोती ले गए, अब ये पैंट हमको दे गए। प्रभुपाद जी ने उनको पैंट उतार के धोती पहना दी। ये बहुत बड़ा विचित्र काम हुआ। और हम यही, अब हमसे हमारी समस्या क्या है, हम अपने देश वालियों के पैंट उतार के धोती पहनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें हमको परेशानी हो रही है। हमको सबसे बड़ी परेशानी इसमें हो रही है। असल में एक होली ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये सारे पैंटों को ही जला के होली मनानी चाहिए और धोतियां पहननी चाहिए, तब समझो कि वापस राम राज आ गए। एक 1915 का चित्र मेरे पास आया था दिल्ली का, सारे लोग धोती पहने हुए थे और सबको पगड़ी बांधी हुई थी। जब तक धोती और पगड़ी थी तब तक कम से कम अपना धर्म बचा हुआ था। अब संस्कार समाप्त होने हो गए, भाषा समाप्त हो गई। अब पिता को डैडी कहते हैं और माता को मम्मी कहते हैं, तो डैडी का मतलब है डेड, मैंने हमारी तरफ से मर चुका है, बस पैसे की वैसी है, मैं पैसा निकालते रहो, बाकी किसी का सेवा नहीं करेंगे, चरण वरण नहीं दबाएंगे, पिताजी के कभी सर के ऊपर मालिश भी नहीं करेंगे, लेकिन एटीएम है, बस कोड दबाओ और पैसा निकाल। और मम्मी तो मम्मी बना के, मम्मी बनाया, मम्मी तो उसको कहते हैं जिसको बर्फ में रख देते हैं मरने के बाद, के बिगड़े नहीं ऐसे कि ऐसे रहे। मम्मियां ऐसी मम्मी हो गई हैं कि अब फ्रिज में ठंडा खाना सबको खिला रही है। मम्मी जब बनाई है तो गर्म खाना कहां से खिलाएगी,
तो फ्रिज का ठंडा खाना पड़ेगा, मम्मी का माल तो यही है। तो ये तो हमारे संस्कार क्या बाप बोल चाल, अरे राम राम इतना पहले लोग मिलते थे, राम राम भाई राम राम करते थे, सुबह से शाम तक तो 50 माला जप हो जाती थी, लोग मिलते मिलते राम राम करते थे। अब राम राम कहीं सुना है आपको, कहीं राम राम सुनाई देता है? ये फोन के आजकल तो इतना अच्छा लगता है मुझे, सबके पास फोन है, ये हेलो के बजाय हरि बोल बोले तो इनका मंत्र जप हो जाए। ये हेलो है कौन मालूम है? कौन है हेलो, किसका नाम है हेलो? जिसने पहले बार फोन बनाया और उसकी पत्नी का नाम था हेलो, उसने फोन किया अपनी पत्नी को पहला हेलो, अभी तक हम सब उसकी पत्नी के पीछे पड़े हुए हैं। भाई इससे कोई मतलब नहीं, इसका कोई इतिहास नहीं, ये हेलो उसकी पत्नी का नाम था, जैसे हेलन होता है हेलो था, उसके फोन तैयार हो गया, उसने पत्नी को फोन मिलाया कि हेलो मैंने फोन बनाया, अभी हम ही तक, अभी हमारा हेलो से जान कब छूटेगी, हमको समझ में नहीं आ रहा। अरे भैया हरे कृष्ण बोलो, हरि बोल बोलो, हरे राम बोलो, कुछ तो भगवान का नाम बोलो, तो भी नाम जप जाओ स्मरण हो जाएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो समझ में आ रहा है आपको कि कितना हमारे संस्कारों का विलोप हो गया है। मेरे ख्याल में अब कथा को यहाँ विराम देते हैं, बैटरी बंद हो गई तो कीर्तन करो 15 मिनट हरे कृष्णा, कल यहाँ से कथा आगे बढ़ाएंगे।